देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। ईशावास्योपनिषद बीच में काफी अलग अलग कार्यक्रम के कारण बीच में रह गए थे, दो तीन मंत्र बाकी हैं। 16वां मंत्र है, पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेज यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योसावसौ पुरुष सोहमस्मि। मंत्र का सामान्य ट्रांसलेशन है वो गॉड, पूषण पोषण करने वाला द नॉरिशर, यमा कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड, एंड एकर्षे अकेला सोलिटरी ट्रैवलर, एंड प्राजापत्य द वेल विशर ऑफ द प्रोजिनेटर्स ऑफ द मैनकाइंड। Do remove your rage and to gather up your dazzle so that I can behold your form which is auspicious. I am that very person that is in you. ये 16वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। यहां सूर्य शब्द है जिसको एड्रेस किया गया है। सूर्य डेफिनेटली जो हमारे जीवन का सोर्स है, जितने भी प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट में रहने वाले जो भी चीजें हैं, जड़ हो चेतन हो, उसकी जीवन का सोर्स सूर्य से ही बनता है। इसीलिए वेद में मंत्र कहता है सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च। जो भी प्राणी है जिनमें भी जीवन है या प्राण नहीं भी है जो जड़ है, उन सबका प्राणों का आधार सूर्य होता है। पर यहां उस सूर्य की बात नहीं है, वो सूर्य जो सारे सूर्यों का भी, जितने भी स्टार्स हैं गैलेक्सीज हैं उनका भी जो सोर्स ऑफ पावर है, जिसके कारण वो सब सूर्य तारे नक्षत्र सब चलते हैं। ये सूर्य भी तो हमारे तरह कुछ दिन तक रहेगा। हमारा आयु मैक्सिमम 100 साल एवरेज है, सूरज का कितने ट्रिलियन ईयर्स होगा, पर नष्ट उसको भी होना है। बाकी जो स्टार्स हैं गैलेक्सीज हैं सूर्य के तरह, कितने आकाश में सूर्य दूसरे सूर्य हैं जिनको हम तारे कहते हैं, परमात्मा उन सब सूर्यों का सूर्य है जो सबको प्राण देता है, जिसके कारण से सूर्य चंद्रमा तारे अपने अपने प्रकाश लेते हैं। तो हम उस परमात्मा परम सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे माहौल बनाओ जब योगी ध्यानस्थ होकर के उस परमात्मा को रियलाइज करता है, तब उस परमात्मा के प्रकाश से चौंधिया हुआ वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे उस दोबारा इस प्रकाश से बेअंड ले जाओ जहां कुछ भी ना हो। प्रकाश होने पर हम दुनिया को देखते हैं एंजॉय करते हैं, मुझे बेअंड दिस लाइट ले जाओ जहां मैं रियलाइज कर सकूं तुम्हारा उस प्योरेस्ट फॉर्म को, उस कल्याण वाले फॉर्म को रियलाइज कर सकूं, और जो मैं जान सकूं कि तुम्हारे में जो तत्व है मुझ में भी वही है। ये सामान्य मंत्र का भाव है। देवियों सज्जनों, भक्त की प्रार्थना है या योगी साधक की प्रार्थना है, जितने ज्यादा हम प्रकाश में रहते हैं हम उतने ज्यादा आंखों से चौंधियाए हुए होते हैं। हमारे आंखें बहुत कुछ देख नहीं सकता। जब आप रोड में गाड़ी चलाते हैं अंधेरे में, किसी दूसरे कार की लाइट आपके ऊपर आता है, आपको कुछ दिखता नहीं है। अंधेरे में हमें नहीं दिखता, पर अंधेरे की एक खास बात है, अगर आप अंधेरे में रहते हैं धीरे धीरे आपकी आंखें उसी तरह से वो अंधेरे में भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है। पर प्रकाश की जो घनता, उसकी जो डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो आप किसी भी तरह से कुछ देख नहीं सकते हैं, वो आपके आंखों को डिसेबल कर देता है। पिछले मंत्र जो इससे पहले वाले मंत्र में हमने पढ़ा था, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्, सच या जो ट्रूथ है वो हमेशा चमकीले सोने के चमक से ढक जाता है। चमक जितना ज्यादा होता है सच इतना छुप जाता है। संसार का चमक इतना ज्यादा होता है, इतना अट्रैक्ट, चमक का मतलब यहां उसकी जो अट्रैक्शन है, जो ब्लाइंडिंग पावर है, जो हमें ब्लाइंड कर देता है मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली भी, वो जो ब्लाइंडिंग पावर है अट्रैक्शन का किसी भी चीज का, वो हमें सोचने समझने की शक्ति से परे कर देता है। और संसार इसी तरह का है, बहुत सब लोग संसार में ब्लाइंड होकर नहीं जीतते, वो डिपेंड करता है कि किसके अंदर का कितनी ज्यादा कितनी शक्ति है कि वो उस अंधेरे में या प्रकाश में अपने आप को सस्टेन कर पाता है। पर ये संसार का नेचर है कि वो अट्रैक्टिव है, वो खींचता है, और वो प्रकाश प्रकाश हमारे हमारे रोशनी देने के जगह हमें अंधा बना देता है। और जब हम अंधे बने उस चीज में ब्लाइंड होते जाते हैं, उसी चीज में डूबते जाते हैं, दुनिया में हमें और कुछ दिखता नहीं है। मजेदार बात है कि हमें वो अच्छा लगता है, रोशनी हमें अच्छी लगती है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, हमारे शरीर को मन को सुहाता है, और हम उसके मजे लेते रहते हैं और भूल जाते हैं कि दुनिया में इसके सिवाय और भी बहुत कुछ मुझे जानने समझने की चीज होता है। इसलिए योगी प्रार्थना करता है कि ये जो भौतिक सूर्य की रोशनी है जीवन में, थोड़ी देर के लिए अंधेरा कर दो कि मैं उससे बेअन जा सकूं। एक बड़ी सुंदर कहानी हमारे शास्त्रों में आख्यायिका बताई जाती है कि एक बार कभी कोई व्यक्ति जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, गांव का आदमी, बहुत पैसा वाला था, उसके पास बहुत पैसे थे, तो जा रहा था तो उसको एक शेर ने खा लिया, मार दिया। तो गांव वालों को पता चला कि कोई धनी आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था, उसको शेर ने पकड़ लिया और मार दिया, खा लिया। न्यूज सिर्फ इतनी नहीं है, न्यूज के पीछे का न्यूज दूसरा है। इस न्यूज के पीछे की न्यूज यह है कि धनी आदमी के पास पैसा बहुत था, तो वो पैसा हमें लेना है। जंगल में पड़ा होगा तो गांव वाले दौड़ने लगे, कौन कितना जल्दी पहुंच जाए जहां शेर ने उसको खाया कि वो पैसा हम ला सकें। तो लोग जिसको जब लगा कि कौन कितना जल्दी दौड़े, वो जा रहे हैं, जो सबसे आगे दौड़ रहा था सुबह होने से पहले ही दौड़ लगाने लग गया, तो वो उस पैसे की खजाने के लिए आगे दौड़ रहा था। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, किसी दूसरे की दौड़ने की, पीछे मुड़ के देखा कि वो शेर उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो आदमी और तेज दौड़ा। हम जिंदगी भर दौड़ते हैं दोनों कारणों से, फ्यूचर के लिए या पास्ट से छुटकारा पाने के लिए, आगे कुछ पाने के लिए खजाना, या पीछे शेर पड़ा हुआ है उससे बचने के लिए। लाइफ में हम दौड़ते हैं और दोनों, दौड़ने के पीछे दो ही कारण होते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसको पाना है, जो है उसको संभाल के रखना है शेरों से, तकलीफ से, परेशानी से। आदमी दौड़ता गया, जोर जोर दौड़ के थक गया, तो वहां एक पुराना सा कुआं था और कुएं में वो गिर गया। कुएं में गिरते ही वहां काफी सारे झाड़ियां, पेड़ पौधे उग गए थे, पेड़ की एक डाली पकड़ के वो लटक गया। लटकने के बाद थोड़ा सांस लिया, क्योंकि काफी जोर दूर दूर से दौड़ के आ रहा था, सांस लिया चलो मैं बच जाऊंगा। पर शेर ने देखा कि व्यक्ति कुएं के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो आगे दौड़ा नहीं, शेर भी कुएं के थोड़ा दूर रुक के बैठा रहा, देखता रहा आदमी कब बाहर निकलेगा। आदमी डाली को, पेड़ की डाली को पकड़ रखा है, सांस लेते लेते नीचे देखा, नीचे देखा तो काफी सारे पुराना कुआं है, नीचे काफी सारे सांप घूम रहे हैं। जो सोचा थोड़ा बच गया, अब और डर बढ़ गया कि नीचे सांप है, अगर गिर जाऊं ऊपर जाऊं तो शेर जान ही रहा है। इसी वहां पोह में वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ऊपर कूदूं नीचे जाऊं कैसे अपने आप को बचाऊं। तो देखा उस ऊपर डाली में कुछ किट 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 आवाज आया, देखा दो चूहे, एक सफेद चूहा एक काला चूहा, दोनों उस डाली के जड़ को काट रहे थे। व्यक्ति और घबराया कि डाली अगर टूट गई नीचे गिरूंगा, सांप है दसेंगे, छलांग लगा के कुएं से बाहर गया, शेर बैठा हुआ है मार डालेगा। डाली को पकड़े रहा तो ये दोनों चूहे हैं, ये काट रहे हैं, डाली कभी भी टूट सकती है। कितनी परेशानी लाइफ में देखिए जी, ये सफेद और काले चूहा और कोई नहीं है, दिन और रात है जो हर मोमेंट हमारे लाइफ को कम करते जा रहे हैं, और उस कम कम होते हुए लाइफ में से हमें चुनना है कि हम कुएं के बाहर जाना है कि कुएं के नीचे जाना है, सांप से लड़ाई करके बचना है या शेर से लड़ाई करके बचना है। इसी वहापोह में हम फंसे हुए ही थे, व्यक्ति फंसा हुआ ही था, तो उसके मुंह में जीभ पर कुछ गिरा, तो उसने जीभ फेरा ओंठों में, मीठा मीठा लगा, पता चला शहद है, बोला बहुत मजा आ रहा है। ऊपर देखा कहीं शहद की कोई छत है और उसमें से शहद टपक रहा है डाली हिलने से। व्यक्ति सोचने लगा काश और दो चार बूंद गिरे। शहद की बूंदें गिरती रहती थी और वो ओंठ को मजे ले लेकर चखता था। देवियों सज्जनों, स्टोरी आगे कुछ नहीं कहता है, कहानी यही खत्म हो जाती है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में यही कहानी है कि हम वो शहद के मिठास के चक्कर में फिर हम भूल जाते हैं कि दिन हमारी लाइफ छोटी होती जा रही है, शेर से भी बचना है, सांपों से भी बचना है, और दिन और रात बीतते जाते हैं, हमारा आयु छोटा होता जाता है, पर वो शहद की मिठास का इतना अट्रैक्शन है कि हमें कुछ और सोचने के लिए रास्ता नहीं देता, हम बस शहद की मजा लेते रहते हैं। ये कहानी इस संसार को और संसार में हमारा जो रोल है उसको समझाने के लिए किसी ऋषि मुनि ने बताया कि ये जिंदगी में काफी संघर्षमय जीवन है ना, लाइफ इज ऑल फुल ऑफ बैटल्स, अलग अलग मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, लोगों से हर जगह हमें संघर्ष करना पड़ता है, एस्टैब्लिश होने के लिए, सुख पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए, मन में शांति लाने के लिए, बीमारी ना हो उसके लिए संघर्ष चलता रहता है। पर संघर्षों के बीच में जहां से भी हमें कहीं सुख मिलने लगता है, फिर हम उस सुख के कारण बाकी संघर्ष को कंप्रोमाइज कर देते हैं। हमें पता है मरना लाइफ का बहुत बड़ा सच है, उसके बिना कोई रास्ता नहीं, बुढ़ापा बहुत बड़ा दर्द का कारण है, इसके हम सबको उससे गुजरना पड़ेगा, बुढ़ापा के रास्ते में नहीं जाना है तो बीच में मौत आ जाएगी और दर्दनाक है, सबको पता है उसके बावजूद भी, और ये भी पता है कि उसके लिए हमें अपनी लाइफ को उसी हिसाब से बनानी चाहिए। हमें मरना है तो सबको भी मरना है, हम दूसरों को कष्ट न दें, पशु पक्षी प्राणी उनका भी जीवन है, उनको भी दर्द होता होगा, पर क्या करें, जो इंद्रियों का जो आकर्षण है, जीभ के स्वाद का, कान के सुनने का, आंखों के देखने का, वो इतने ज्यादा शहदी मिठास से भरा हुआ होता है कि हमें उस समय उस शहद की स्वाद के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है कि सांप भी होंगे, शेर भी होगा। तो जीवन तो ऐसा ही है, वो अट्रैक्शन इतना ज्यादा ब्लाइंडिंग है उस शहद की तरह, आपको कुछ उपाय, कुछ सोचने के लिए समय नहीं मिलता है कि मुझे कुछ तैयारी करना है सांप से बचने के या शेर से बचने की। इसीलिए योगी, समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि थोड़ी देर के लिए तुम इस संसार के आकर्षण को मुझे शक्ति दो, इसको दूर कर सको, तो जिससे कि मैं उस आकर्षण के उस तरफ, उस प्रकाश के उस तरफ जो अंधेरा है, अंधेरा मतलब जो दिखता नहीं है, मैं उसको ठीक से जान सकूं। वो तुम्हारा असली स्वरूप, जो इस संसार का कारण हो, तुम इस संसार को बनाने वाले हो, मेरा भी कारण हो, मेरे जिंदगी में हर चीज का कारण हो, मैं तुम्हें समझ सकूं, ठीक से जान सकूं, उसके लिए जरूरी है कि मेरे इंद्रियां इन प्रकाशक चीजों से थोड़ा थोड़ी देर के लिए दूर हटे, अंदर जाए। इसीलिए तो जब भी आप पूजा करते हैं, मन लगाकर करते हैं या नहीं भी करते हैं, तब भी आपको सिखाया जाता है आंखें बंद करो। मन लगा के करें, कोई सिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप आंखें बंद हो जाएंगी। जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, दिल से मन से आप प्रार्थना करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, पहली चीज है कि आंखें, इंद्रियों को आंखें बंद करना, उसका द्योतक है, प्रतीक है कि इंद्रियों को बाहरी दुनिया से रोकें, रोक करके छोड़ने देना, अंदर लेने की कोशिश करें। क्या जरूरत है अंदर लेने के लिए बाहरी दुनिया से काटें, क्योंकि एक ही साथ आप एक ही काम कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाते समय अगर आप टीवी देखते हैं, फोन पर बात करते हैं, तो अगर आप खाने का आनंद ले रहे होते हैं, तब तक आप टीवी में जो प्रोग्राम चल रहा है उसका आनंद नहीं ले पाते उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, और जब टीवी में घुसे होते हैं, खाने का आनंद नहीं होता है। हमारे दर्शन शास्त्र में मन का डेफिनेशन करता है कि वो एक ही समय में एक ही ज्ञान लेता है। पांच इंद्रियां है, ये पांचों इंद्रियों से बहुत सारे चीजें, इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आता है, पर दिमाग ऐसी छलनी है, माइंड, जिसमें एक ही छेद है, नीचे से ऊपर से पांच छेद है, नीचे एक ही समय में एक ही चीज जाता है। इसीलिए कोई भी काम करें तो जब फोकस्ड होने का मतलब यही है कि अगर आप खाना खा रहे तो खाना ही खाइए, तो खाने का आनंद मिलेगा। इवन सूखी रोटी और सूखा चावल का भी आनंद, स्वाद होता है, पर हम भूल चुके होते हैं हजार सैकड़ों सालों से कि रोटी का भी कुछ स्वाद होता है, क्योंकि इतने सारे मसाले सब्जियों के साथ खाते हैं, या खाते समय हम ऐसे हजारों चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपको पता चलेगा सूखी रोटी का भी स्वाद होता है, पर जब आप फोकस्ड होकर के खाएं, फिर आप तले हुए मसालेदार बड़े यम्मी यम्मी सब्जी की जरूरत भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम फोकस्ड नहीं है खाने में, इसलिए हमें अलग अलग तरह के स्वाद चाहिए, जिससे कि खाना पेट में जाए, आपके अट्रैक्शन उन स्वादों की ओर जाए। इतना हम अनफोकस्ड है, माइंड से इतने दूर भाग गए हैं, इसीलिए कि हम अपने आप को फोकस्ड कर सकें, बाकी चीजों से मन को हटा सकें। हे प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। योगी प्रार्थना करता है, मैं मृत्यु को पार कर चुका हूं, मतलब मैं नहीं मरने वाला, पर मुझे जीवन से भी पार जाना है। देवियों, सज्जनों, ये पेयर्स होते हैं, जन्म और मृत्यु। आप अगर मृत्यु को पार कर जाते किसी तरह, तो यकीन मानिए आपको जन्म से भी पार पा जाना होगा। अगर आप पैदा होने पर कंट्रोल कर पाते हैं, अपने आप को पैदा होने नहीं देते, यकीन मानिए आप मरेंगे नहीं। ना मरने का एक ही और एक ही और एक ही रास्ता है, और वो है कि पैदा ना होना। तो पैदा होना मरना दोनों एक दूसरे एक ही कॉइन के दो साइड है, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। इसी को कहते हैं ड्युअलिटी, ड्युअलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि हम दोनों के बीच के जीवन है। इसलिए लाइफ में जितने भी पेयर सब अपोजिट्स हैं, वो अपोजिट्स अच्छा और बुरा, सुख हो दुख हो, कोई आपको काफी क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है या तारीफ कर रहा है, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु मुझे सब लोग प्यार करें, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार उस कॉइन का एक साइड है जिसके दूसरे साइड में नफरत होता ही होता है। आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु प्लीज मुझे सुख दे दो, सुख दे दो, ईश्वर सुख दे देंगे, पर आप भूल जाते हैं कि सुख उस कॉइन का एक साइड है जिसके दूसरे साइड में दुख है। ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरवोवन है। आप केवल सुख पा ही नहीं सकते हो, आप केवल दुख पा ही नहीं सकते हो, आप केवल तारीफ सुन ही नहीं सकते हो, आपको निंदा ही भी सुननी पड़ेगी। जिसकी भी तारीफ दुनिया में हुई है, आप नाम लीजिए उन महापुरुषों की जिनको बहुत ज्यादा लोग मानते हैं पूछते हैं, उतने ही उनके निंदा करने वाले लोग हैं। वो गांधी हो, बुद्ध हो, कोई भी मां नाम लीजिए, आप नाम लीजिए उस बुरा आदमी की जिसको आपको लगता है बहुत गंदा है, यकीन मानिए करोड़ों में लोग हैं जो उनकी तारीफ करते हैं। निंदा और प्रशंसा एक ही कॉइन के दो साइड हैं। हमारी प्रॉब्लम है हम एक को चूज करते हैं, दैट मीन्स मेंटली यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, एंड दैट्स द कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम। हम सुख के लिए इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, सुख के साथ दुख आते ही हल्का सा दुख आया नहीं तो हम बेचैन हो जाते हैं। पर इसीलिए स्मार्ट लोग कभी ईश्वर से मांगते नहीं है कि सुख दे दो, धन दे दो, क्योंकि जो समझदार लोग उनको पता है कि साथ में रस्सी भी आएगी, है ना, सुख मिलेगा तो साथ में दुख भी आएगा, प्रशंसा आएगी तो साथ में निंदा भी आएगी, अच्छा आएगा तो साथ में बुरा भी आएगा। आप कहें प्रभु मुझे प्रकाश ही प्रकाश दे दो, अंधेरा नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता ना। नंबर टू, आप जी भी नहीं सकते केवल प्रकाश में, केवल निंदा में, केवल प्रशंसा में। प्रशंसा अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि निंदा बुरी लगती है। आपकी कभी निंदा ना हो और जिंदगी भर प्रशंसा होती चले तो प्रशंसा आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा, और कभी कभी फिर प्रशंसा में आप ढूंढेंगे उसकी इंटेंसिटी। अच्छा, उसने जो तारीफ किया कि आप बहुत अच्छे हो, उसने दिल से नहीं किया, और यही कारण होगा कि आप दुखी होंगे। आप दुखी इसीलिए हो जाएंगे कि उसने तारीफ जो किया उसमें वो इंटेंसिटी कम थी, क्योंकि आपको कभी निंदा सुनी नहीं। प्रशंसा ही दो टुकड़े में बंट जाएगा, एक निंदा जिसमें इंटेंसिटी कम होगी और जो इंटेंसिटी के साथ हो। ये माइंड का नेचर है। इवन आपको कोई निंदा ना भी करे तो भी आप अपने आप ढूंढ लोगे कि इस ये निंदा वाला प्रशंसा थी, ये प्रशंसा वाली प्रशंसा थी। देन यही ड्युअलिटी ऑफ लाइफ है कि लाइफ में ये सब चीजें दोनों हो करके आते हैं। इसीलिए योगी प्रार्थना करता है कि मुझे इन ड्युअलिटी से बाहर निकलना है। जब तक मैं इससे ट्रांसेंडेंट ना हो जाऊं, इससे ऊपर ना चला जाऊं, मैं वो रियलिटी को समझ नहीं सकता। उसी का नाम होता है आनंद, सुख और दुख से परे। देवियों सज्जनों, जिसे हम सुख और दुख कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, ये जो वर्ड है वो संस्कृत में अपने आप बड़ा सुंदर वर्ड है। ख कहते हैं इंद्रियों को, सेंसेस को, सु मतलब अच्छा। एनीथिंग दैट इज गुड फॉर सेंसेस इज कॉल्ड सुख और हैप्पीनेस, एनीथिंग दैट इज बैड फॉर सेंसेस, दुख फॉर ख इज कॉल्ड दुख। इसका अर्थ नहीं कि चीजों में कोई सुख या दुख छुपा हुआ है, वो चीज अगर आज मेरे माइंड को, मेरे सेंसेस को अच्छा नहीं लग रहा है, वही दुख हो जाता है। कल तक आप मीठा से, आप मीठा देखते ही उछलते थे, आज मीठा देखते ही आपको पसीना आ जाता है। अच्छा आज भी लगता है पर पसीना आ जाता है, खा लूं तो मुझे 4 इंसुलिन लेनी पड़ेगी। अब दर्द बहुत होता है मीठा खाने के लिए भी। मीठा तो वही है, व्यक्ति तो वही है। कल तक बड़ा अच्छा लगता था, पापा है, हर चीज में मुझे रास्ता बताते थे, बेटे ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, अच्छा लगता था, सीखता था। अब जब वही पापा आ जाते हैं टोकने के लिए, बेटे ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, इरिटेशन होता है। अब बड़ा हो गया हूं, अपनी मेरी समझ है, पापा वही है, उनकी टोकने की प्रवृत्ति आज भी वही है, तब अच्छा लगता था जब मैं नहीं जानता था, अब अच्छा नहीं लगता। टोकना अच्छा या बुरा नहीं है, मुझे सेंसेस को सुख या देते हैं। इसलिए कहता है कि मुझे उससे बियॉन्ड जाना है, वो ड्युअलिटी के। हमारा प्रॉब्लम है, हमें उस ड्युअलिटी का पेयर का एक चीज चाहिए, हमें सिर्फ सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो होगा नहीं। तो दुख जब भी आएगा हमें उसकी फीलिंग ज्यादा होगा, दर्द ज्यादा होगा, क्योंकि हम मेंटली रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए कि दुख लाइफ में आ सकता है। जो केवल प्रशंसा ढूंढते हैं, हल्की सी निंदा आते ही ज्यादा तिल मिलाएंगे, इसलिए नहीं कि निंदा की इंटेंसिटी ज्यादा है, हमारे अंदर उसे एक्सेप्ट करने की पावर बहुत कम हमने कल्टिवेट किया है, हमने सोचा भी नहीं कि निंदा आ भी सकती है। जो स्मार्ट लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन दोनों को आप, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें, निंदा और प्रशंसा दोनों मेरे लिए अच्छा है, गर्मी और ठंड दोनों में मैं एक जैसा, मेरा शरीर रिएक्ट करता है। उसका सिंपल एग्जांपल देखिए, आप जब भारत में थे, जब आप फाइनेंशियली भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, बसों में जाते होंगे, ऑटो में जाते होंगे, ऐसे घर में रहा होगा जहां एयर कंडीशन नहीं होगा, तब तो आप गर्मी में भी ठंड में भी बड़े आराम से रह जाते थे। अब ऐसा है कि 80 डिग्री टेम्परेचर होता नहीं है तो आप तिलमिलाने लगते हो, घर के अंदर घुस जाओ, बाहर जाने को मन नहीं करता, क्यों? बॉडी को हमने उसी तरह आदत बना दिया है। पर लोग हैं मजदूरी जो यहां भी काम करते हैं, इसी धूप में जहां आपको तिलमिला जाता है, ऐसे ही लोग हैं जो बाहर काम करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, उसी गर्मी में उसी ठंड में काम करते हैं, उनको इतना गर्मी नहीं लगती जितना आपको हमें लगता है, उतना ठंड नहीं लगता जितना हमें और आपको लगता है। दो चीजें, या तो आप दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए, गर्मी और सर्दी आपकी आदत पड़ जाएगी, निंदा और प्रशंसा, सुख और दुख। जिस दिन आप दोनों में बैलेंस्ड हो जाएंगे, दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो भी आप बैलेंस्ड हो जाएंगे, तो भी यू आर बियॉन्ड ऑल दिस पेयर ऑफ अपोजिट्स। दूसरा रास्ता है कि दोनों को ही छोड़ दीजिए, या तो आप कहिए कि मुझे निंदा भी नहीं चाहिए, प्रशंसा भी नहीं चाहिए, दोनों से ऊपर हो जाएंगे। जिसके लिए जो आसान तरीका है, तरीका तो यही है, जिसको भी वो जो पूरा आनंद का मजा लेना है, उसके लिए एक ही रास्ता है, या तो दोनों को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कॉइन तो एक ही है, आप कॉइन को तोड़ोगे, क्योंकि जहां क्वार्टर लिखा है वो मुझे चाहिए, और उसके साइड वाले में जहां वाशिंगटन डीसी का या किसी प्रेसिडेंट का फोटो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चलेगा। तो आप कॉइन को तोड़ोगे, कॉइन की तोड़ के लेकर जाओगे क्वार्टर वाला साइड को, तो दुकानदार वापस कर देगा, ये कॉइन नहीं चलता। तो आपको लेना पड़ेगा या दोनों छोड़ना पड़ेगा। आपको कॉइन में किसी साइड में किसी चीज में प्रॉब्लम है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, गो बियॉन्ड दैट और लीव विद दैट, देयर इज नो थर्ड वे। और जब हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, आप दोनों को एक्सेप्ट करें तो भी आप योगी बन गए, आप दोनों को छोड़ दें तो भी आप योगी बन गए, दोनों में से आप कोई भी रास्ता अपनाएं आप योगी बन गए। हो सकता है आप अनजाने में छोड़ते रहे या एक्सेप्ट करते रहे, पता नहीं चला आप कब योगी बन गए। मंत्र में कहते हैं पूषन्नेके यम सूर्य, वो जो यमराज जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, सूर्य और यम, यम मृत्यु का नाम है, डेथ का। बड़े मजेदार है, संस्कृत शब्द की अपनी चार्म होता है, मुझे नहीं पता डेथ का रियल एटिमोलॉजी क्या है, पर संस्कृत में जो यम शब्द है जो मृत्यु के लिए आया, उसका मतलब होता है रेगुलेशंस, रेगुलेटर, जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। यम इज द लॉर्ड ऑफ डेथ एंड सन इज द लॉर्ड ऑफ लाइफ, सूर्य जीवन का कारण है और यम मृत्यु का कारण है। और माइथोलॉजी में हमारे पुराण की कहानियों में आता है यम जो है यमराज, मृत्यु की देवता जिसको कहते हैं, वो सूर्य का पुत्र है। ये पिता पुत्र संबंध है, जहां भी जन्म है जीवन है, जहां भी सूर्य है वहां यम है, जहां भी जीवन है यहां मृत्यु जरूर है। अब दोनों की समस्या है कि दोनों एक ही जगह से आते हैं, जीवन भी और मृत्यु भी, क्योंकि एक ही कॉइन के दो तरफ है। जीवन लाइफ को, मृत्यु लाइफ को बैलेंस्ड बनाता है। अगर हम ना मरते, कल्पना करिए अगर आप मरते ही नहीं, तो सच बात यह है कि तो आप होते ही नहीं, आपकी जो भी ग्रैंड पेरेंट्स तो वही अकेले आज 400, 500, हजार साल का हो गया होगा, तो धरती के सारे अनाज तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही खा रखे होते, आपके लिए क्या बचा होता है। साइकिल है, सबको मौका मिलता है, सबको मौका सिर्फ ये नहीं मिलता, सबको बराबर मौका मिलता है। कुछ गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, अगले जन्म में आपको सुधरने को मौका मिलेगा, इस लाइफ में भी नहीं हो पाया। मनुष्य जन्म को ठीक से भोग नहीं पाया, खराब हो गया, पशु बने, वही पशु बने जिसको हम खाते हैं, पशु बनने के बाद फिर इंसान बन सकते हैं, पर उसके लिए मरना पड़ता है। मरना इस यूनिवर्स को बैलेंस में लाता है। अगर हम नहीं मरते तो सामान तो उतना ही है, फिर हमारे दूसरे लोग जो आते हैं हमारे बाद, हमारे बच्चे, वो क्या खाते, क्या पीते, कहां रहते, कल्पना करिए देश की, दुनिया की जनसंख्या कितनी होती। इसीलिए पुराणों में आता ये देवता लोग जो अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, आपको केवल प्रशंसा मिले, केवल सुख मिले, थोड़ी देर के बाद आपको उसी में ही दुख होने लगता है, अब उब जाते हो। तो पुराण की कहानियों में आता है देवता लोग स्वर्ग में होते हैं, और स्वर्ग में क्या है जो आप कहानियों में सुनते हैं, वहां कोई बुढ़ा नहीं होता है, हमेशा जवान रहते हैं, कल्प वृक्ष है, जो मांगो मिलता है, हर तरह की सुख सुविधाओं का सामान है। पर देवता लोग फिर उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, वैसे ही जैसे आप खाली खुशी खुशी रहे तो आप दो चार छह महीने एंजॉय करते, फिर उब जाते हो। बढ़िया बढ़िया खाना पार्टी में ही अच्छा लगता है, रोज बढ़िया बढ़िया खाना खाओ तो उब जाते हो, फिर कहते भाई दाल चावल खिलाओ, रोटी दाल 8-10 दिन खिलाओ, मुंह खराब हो चुका है। भाई आप तुम अच्छे खाने के लिए तरस रहे थे, कह रहे थे चलो वन से वो एक रेस्टोरेंट चलते हैं, 15 दिन में एक बार रेस्टोरेंट चलते हैं, अच्छा खाना मिलता है। अब तो मैंने घर में ही रेस्टोरेंट खोल दिया, रोज आपको रेस्टोरेंट का खाना खिला रहा हूं, फिर क्या प्रॉब्लम है? अब दाल रोटी खिलाओ बहुत हो गया, क्योंकि सुख भी बहुत ज्यादा हो वो भी तकलीफ देता है। तो कहते हैं कि देवता लोग फिर वापस आ जाते थे इंसान बनने के लिए, क्यों? उनको बोला ये लोग ज्यादा अच्छे हैं हमसे, इनको मीठा का स्वाद ज्यादा पता है, क्योंकि ये खट्टा भी खाते हैं नमकीन भी खाते हैं, और हमें तो रोज मिठाई मीठा देते थे, हमें पता ही नहीं चलता था ये मीठा होता क्या है। देवियों सज्जनों, मीठा का मिठास तभी पता लगता है जब आपको कड़वाहट का पता हो, नमकीन का पता हो, तीखा का पता हो, नहीं तो कैसे पता चलेगा? मृत्यु जीवन का मजा क्या है वो तभी पता लगता है जब मृत्यु होता है। मौत नहीं होता तो हम सब लेजी होते, आलसी होते, बिस्तर पर पड़े पड़े करोड़ों लोग हजारों हजारों साल बिता देते, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मरना तो है ही नहीं है। ना कोई जमीन में मेहनत करता, ना कोई ऑफिस जाता, ना कोई काम करता, ना व्याख्यान में जाने जरूरत है, ना पैसा कमाने की जरूरत है, ना कुछ प्रवचन देने की, कुछ नहीं करने की जरूरत है। पड़े रहो ठीक है, 10-12 दिन पड़े रहो, क्या मरना तो है नहीं। कैसी जिंदगी होती! इसीलिए मृत्यु जीवन में अभिशाप नहीं है, वो बैलेंसिंग फैक्टर है, इसीलिए यम है। तो लाइफ में जितने जिसको भी हम प्रॉब्लम्स कहते हैं, डिस्ट्रेस कहते हैं, वो लाइफ को बैलेंस भी बैलेंस बनाने के लिए होते हैं, वो सब यम है, रेगुलेटर है लाइफ में। जब नेचुरली वो नहीं होते हैं तो फिर हमें आर्टिफिशियली करना पड़ता है। जब आप नेचुरल डिस्ट्रेस को सह नहीं पाते हो नेचुरली, फिर आपको कहा जाता है, आपके शास्त्र उपदेश देते हैं, इसको आप फिर डिलिबरेटली प्रैक्टिस करो, उसके लिए भी यमन यम नाम दिया। दुख आता है, वो दुख भी हमें बैलेंस बनाता है, सुख का मजा को ज्यादा अधिक बनाता है। दुखी होते, परेशान होते हैं, परेशानी के बाद जो जो रिजल्ट मिलता है वो ज्यादा मिठास से भरा हुआ होता है। अंधेरे में रहते हैं तभी प्रकाश की कीमत समझ में आती है। मैटेरियल वर्ल्ड में जब ज्यादा रहते हैं तो पता लगता है कि वो कितना बेकार हैं, तब स्पिरिचुअल लाइफ की पता लगता है। इसीलिए देखेंगे जो लोग प्योरली मैटेरियल लाइफ में जीते हैं वो कितने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जितने भी ग्लैमर वर्ल्ड में रहने वाले लोग उनकी डिप्रेशन का लेवल कितना हाई होता है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी शरीर और मन के अलावा कुछ सोचा नहीं था। अब धीरे धीरे ग्लैमर वर्ल्ड में भी मेडिटेशन, योगा, प्रेयर, गोइंग बियॉन्ड दीज पेयर्स ऑफ अपोजिट की कितनी ललक बन रहा है आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मंत्र कहता है कि वो परम सूर्य, समस्त संसार के सूर्य, सबको रेगुलेट करने वाले यम, आप कंट्रोलर हो लाइफ और डेथ का, जीवन और मृत्यु के कंट्रोलर हो। आप अपने इस प्रकाश की किरण को खींच लो, लाइफ और डेथ की जो डुअलिटी है उससे हम ऊपर चले जाएं, बियॉन्ड द अपोजिट पेयर्स ऑफ अपोजिट चले जाएं, जहां हम उस असलियत को जान सकें, ये जीवन क्या है। ये सुख दुख के पेयर से जब आप बियॉन्ड जाएंगे, गर्मी और सर्दी की पेयर से जब आप बियॉन्ड जाएंगे, तब समझ में आएगा कि ये जीवन की असलियत क्या है। और वो असलियत क्या है, मतलब वो तो कल्याणतमम रूपम, वही तो है कल्याणतम रूप, जो आनंद से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ, कल्याण करने वाला रूप है, वही रूप है जो कि लाइफ और डेथ के बियॉन्ड होता है, which is beyond birth and death, which is the original source of all the creation. उस परमात्मा को हम जान सकेंगे और उससे पहले हम खुद को जान सकेंगे. तो मंत्र की समराइज्ड करके कहता है, वो गॉड द नॉरिशर एंड कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड पूषण एंड यम द सॉलिटरी ट्रेवलर अकेले घूमने वाला एक अर्षे द वेल विशर अप्रोजिनेटर्स ऑफ मैनकाइंड प्राजापत्य डू रिमूव योर रेज डू गैदर अप योर डैजल लेट मी बिहोल्ड योर फॉर्म विच इज ऑस्पिशियस आई एम दैट वेरी पर्सन दैट इज इन यू द मोमेंट यू रियलाइज योर सेल्फ उसकी जो शुद्धता को जिस दिन हम एहसास करेंगे फील करेंगे उसी मोमेंट हमें फील होगा इस मेरे इस शुद्ध स्वरूप का जो सोर्स है वो जो परमात्मा जो परम शुद्ध स्वरूप है वो कितना महान है. वो आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को रियलाइज करने का तभी मौका मिलेगा जब हम पेयर्स ऑफ अपोजिट से बैठ जाएंगे. अगर इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी लाइफ में बैलेंस्ड बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी को एंजॉय करने के लिए खुशी की डेंसिटी को एंजॉय करने के लिए ये जरूरी है कि हम तपस्या मतलब प्रैक्टिसिंग टू बियर द पेयर्स ऑफ अपोजिट सुख और दुख अच्छा या बुरा प्रकाश और अंधेरा उससे ऊपर जाने की कोशिश करें. इसी भाव के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद. अगले रविवार को नए विचार के साथ आएंगे. ओम शांति शांति शांति. ओम.